एतं तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय यही लोग श्रोता लोग अति
महाराज ये श्रोता है हम लोग श्रोता है
उनके आदेश से रूप गोस्वामी ने भक्ति का शुद्ध स्वरूप जगत में प्रचार किया। मैंने पढ़ रहा है ना पढ़ रहा है और आगे आगे
ये हारमोनियम पीछे कर रहे
भक्ति तो पहले भी थी नित्य काल से भगवान है भक्ति भी है भक्त लोग भी किंतु इस धारा को रूप गोस्वामी के बाद में हम लोगों की धारा में रघुनाथ दास गोस्वामी हुए और उनके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए। बीच में सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी
जीव गोस्वामी
इन लोगों का भी भक्ति प्रचार में बहुत योगदान रहा। इसके बाद में वो धारा नरोत्तम ठाकुर जी श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास जी इन तीनों के माध्यम से जगत में विकसित हुई। उसके बाद में आए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अपना नाम भी नहीं बदला, ये कुछ भी नहीं बदला और रूप गोस्वामी के विचारों को यथाजथ रूप में ठीक ठीक रूप में प्रकाश करने की उन्होंने चेष्टा की, सारा प्रयत्न नए रूप में समाज के अनुकूल, जिसमें करीब करीब इन दोनों का अंतर रूप गोस्वामी और महाप्रभु जी उनका करीब 250 वर्ष का होगा, तो परिस्थितियां बदलती है किंतु भक्ति का विचार जो होता है एक ही होता है, उसके बाहरी आचरणों में कुछ अंतर इधर उधर होगा किंतु मूल जो विषय है भक्ति का सुनता वो ठीक रहेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के बाद में बलदेव विद्याभूषण जी आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते हैं, हम लोगों के गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, राजी मान भक्ति उसी धारा को देने की चेष्टा करते हैं। जिसका जैसा सौभाग्य होता है, कोई कोई इसके बाहरी ढांचे को आवरण को लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उनका वहीं तक अधिकार होता है, वो भी ठीक ही है, और जो इसके भीतरी स्वरूप को समझ करके इसको ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं वो दूसरी बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आज से करीब 250 वर्ष पहले की बात है, तो हुए उन्होंने जो धारा वो थोड़ी सी दब रही थी ढक रही थी उसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, भागवत की उन्होंने व्याख्या लिखी है, गीता की टीका लिखी है, स्वतंत्र रूप में ये जितने रूप गोस्वामी के ग्रंथ हैं उनको सरल सहज भाषा में, संस्कृत भाषा है किंतु सरल, जिसको हम लोग भी समझ सकते, आप लोग नहीं समझे, उस रूप में उन्होंने लिखा। उस समय के लिए ये एकदम साधारण प्रचलित भाषा थी ये, जैसा उन्होंने संस्कृत लिखा। किंतु अब वो भी नहीं चले, अब उसकी भी व्याख्या इत्यादि की जरूरत है। और सरल सहज सुबोध भाषा में, विशेष करके उर्दू मिश्रित हिंदी ये सब में, जिसको साधारण आदमी भी फॉलो कर सके, इस रूप में इसकी जरूरत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक माह पहले लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, भक्ति राज्य का एक वो आइन की पुस्तक है, वो
आइन
दर्पण
कानून
कानून
उसमें सब परिभाषाएं जितनी हैं भक्ति की और श्रद्धा की, भाव की, स्नेह की, कृष्ण की, भक्ति का, भक्त का, ये सब चीज़ें उसमें उन्होंने विचार करके लिखा, जो साधारण स्थिति से भी साधक किस प्रकार से उन्नत ब्रजरस तक पहुँच सकता है। इसके लिए उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकों के आकार के रूप में विशाल विशाल ग्रंथों का सार उसमें सागर को गागर में भर दिया, गागर में सागर ही भर दिया। मानिए इसमें भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक लिया है इस ग्रंथ में, माधुर्य कादंबिनी में। साधक कैसे भक्ति को धीरे 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 अग्रसर करके साधन की अंतिम स्थिति भाव वहां तक ले जा सकता है। साधारण से भी, साधारण में भी साधारण ऐसा मत समझो कि ऐसे साधारण आदमी जो कर्म और ज्ञान में डूबे हुए, ऐसे लोगों के लिए नहीं। भक्ति की महिमा समझ करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने के लिए जिनकी एकांतिक इच्छा जग गई है, उन लोगों के लिए है। जो भी देवताओं देवताओं की देवियों की उपासना में हैं, अभी संसार के पदार्थ उनको चाहिए, मुक्ति चाहिए और वैकुंठ की भक्ति चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं। वो लोग भी पढ़ें तो वो धीरे धीरे आकर्षित होकर के इधर आ जाएंगे। इस चीज़ को उन्होंने एक श्लोक के ऊपर में इस माधुर्य कादंबिनी को लिखा। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक के ऊपर में भक्ति रसामृत सिंधु
पूरा ग्रंथ एक श्लोक पे,
एक श्लोक, वो श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्धि अनावृतम आनकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, एक श्लोक। इसी पर आधारित कर करके उनके जितने भी ग्रंथ हैं, और भक्ति राज्य इसी श्लोक के ऊपर में खड़ा है, एक श्लोक समस्त भक्ति राज्य। और इसमें साधारण आदमी हम लोगों से लेकर के और राधा जी का भाव भी इसी में आ गया है, सब कुछ इसमें आ गया। बीज में जैसे अंकुर से लेकर के फल, पके हुए फल तक का सभी उसमें है, ऐसे ये सब में चीज। तो हम लोग रूप गोस्वामी के अनुगत्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादंबिनी जो ग्रंथ है, चार पांच दिन धारावाहिक भाव से, आध घंटा हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट, 1 घंटा, जैसा होगा इस पर हम इसकी व्याख्या करें। शुद्ध भक्ति जानने वालों के लिए और करने के लिए बहुत ही ये सहज उपयोगी और अनुकूल है। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, अन्याभिलाषिता शून्य, बहुत बार व्याख्या हमने की है, पुस्तकों के रूप में भी, व्याख्या के रूप में हमने दी है। साधारण रूप में समझिए, कृष्ण का अनुशीलन तन मन वचन सब प्रकार की एनर्जी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न माने प्रीति के लिए, ये तीनों चीजों की जो चेष्टाएं हैं आप करेंगे तो इसको कहते हैं भक्ति। तन से, मन से, वचन से, भाव से जितनी सारी चेष्टाएं हैं उनको तैल धारावत अविच्छिन्न गति से, तार कहीं टूटे नहीं। और वैष्णव के अनुगत्य में जो इसके पारखी हैं तत्व को जानने वाले, उनके अनुगत्य में कृष्ण को केवल प्रीत करने के लिए, उनको केवल प्रसन्न करने के लिए हमारी ये जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। किंतु भक्ति करने पर भी जब तक कि कर्म कोई अभिलाषा रहेगी, संसारी कर्म वासना, ये इस कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं तब तो वो भक्ति होगी, और नहीं तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए और उससे हम संसारिक चीज चाहते हैं, अपनी चीज चाहते हैं कोई विशेष, तो ये भक्ति नहीं, ये सगुण भक्ति हो गई, शुद्ध भक्ति नहीं हुई। भक्ति किंतु उत्तमा भक्ति नहीं होगी, इसलिए उत्तम शब्द भी नहीं कहा, केवल कहा जी कृष्ण का अनुशीलन है, यही भक्ति है। इसलिए कृष्ण के लिए कर रहे हैं किंतु फल भी कृष्ण को मिले और हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसा उसमें होना चाहिए। कोई भी अभिलाषा संसारी परमार्थी कोई नहीं। साथ ही साथ में कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, ज्योतिष शास्त्र, कवच तवच ये सब जो धारण इत्यादि, ये सब जितनी भी चीजें हैं इनका सहारा भक्ति में नहीं चाहिए। भक्ति स्वतंत्र है, कर्म से हम सत्कर्म करेंगे फिर उसे चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर हम उसको भक्ति में लगाएंगे, और इन चीजों के बिना हम सहायता से भक्ति नहीं होगी तो भक्ति गड़बड़ हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र अवलंबनाना, भक्ति स्वतंत्र, किंतु बिना भक्ति के और कोई काम नहीं होगा, कोई भी काम नहीं हो सकता। भक्ति जरूर करनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट लोग कहेंगे जी हम लोग तो भगवान मानते नहीं है, भक्ति का प्रश्न क्या है? तुम अपने अफसरों को जो प्रसन्न करने की ये जो कर रहे हो, अपने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, ये क्या चीज है प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़ कर कहते दो रुपया में हम चावल दिला देंगे? और उसके लिए प्रधानमंत्री की जरूरत, जैसे आप हमारा ये अर्थ की व्यवस्था करें, ऐसा कर्म कर देंगे जैसे वो प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न करना का यही भक्ति की भावना है मुंह। तो बिना भक्ति के कोई भी कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या कोई भी फल नहीं देगा, भक्ति की उसमें जरूरत। किंतु भक्ति कुछ नहीं करें और केवल भगवान का नाम करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, प्रभु की प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, अर्चन करें, तो ये सब कुछ इसी भक्ति के द्वारा ही भक्ति देगा, और किसी की जरूरत नहीं, किसी की सहारा की जरूरत नहीं। किंतु बिना भक्ति के और कोई चीज फल देने में समर्थ नहीं, इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। और इसमें इस चीज को समझना चाहिए, भक्त से भी अधिक, भगवान से भी अधिक प्यारा, भगवान की जिससे सेवा होती है उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने मक्खन चोरी की और यशोदा मैया ने उनके कान पकड़े, किस लिए? जैसे ने तुम तो ये नष्ट क्यों कर दिया, चोरी क्यों किया? उन्होंने दूध के लिए इनको डांटा फटकारा, गोदी से उतार दिया,
जो दुबल रहा
है, कृष्ण रो रहे हैं, किंतु यशोदा जी किस लिए ऐसा किया? कृष्ण की चीज थी ना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपने लिए तो उन्होंने नहीं किया, इसलिए इसको भी भक्ति समझो। और दूसरे तरफ में दुर्योधन कृष्ण को सम्मान दे रहा है, ये सम्मान किस लिए दे रहा है? आप हमारे तरफ में मिल जाइए, उनका पक्ष मत लीजिए। तो वो कृष्ण को जो प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से सजाया है, घर को खाने के लिए पीने के लिए सब व्यवस्था की है, स्वागत के लिए सोने का द्वार बनवा दिया और सब जो चीजें कर रहा है, ये किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने पर भी वो भक्ति नहीं है, है ना?
अंतिम उद्देश्य अपने प्रसन्नता,
अपने लिए। चारण मुष्टि कृष्ण से लड़ रहा है, कृष्ण को आनंद हो रहा है, ये आनंद कृष्ण को हो रहा है, किंतु ये भक्ति नहीं है, क्योंकि उनको मारने के लिए कर रहा है। ये चीज को समझना चाहिए। जैसे राधिका जी कहती हैं, आप यहाँ से निकल जाइए, सीधी तरह से निकल जाइए, आपसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, कह कर के ऐसा कर। कृष्ण पहिया पड़ने लगे, ये कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? नहीं, राधिका जी का जो कुछ है वो सब कृष्ण के लिए ही है। अभी नहीं समझने पर भी हम लोग भक्ति में कुछ अग्रसर होने पर इन चीजों को समझेंगे। राधा जी कृष्ण की लादिनी शक्ति है, इसलिए जो कुछ भी करती हैं वो कृष्ण के लिए, उनको क्रोध से भी बोलेंगी, कुछ बातचीत भी नहीं करेंगी, यहाँ तक कहेंगी जैसे हमारे पैर थक गए हैं, कृष्ण से डायरेक्ट कहेंगी हमारा पैर दबा दो, ये कहाँ की भक्ति? वो तो भक्ति और उनसे लेना हुआ नहीं, ये सब भी चीजें हैं, इसलिए इसको भी भक्ति में ही समझो। साधारण लोग नहीं समझेंगे इन चीज को, इसलिए यहाँ तक के भाव सब उत्तमा भक्ति ही है। नीचे से आरंभ किया, कहाँ से? ज्ञान कर्म नहीं रहा, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और जो अनुभवी जो वैष्णव है उनके अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में
निरंतर
कृष्ण को प्रसन्न, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लौकिक दृष्टि से वो झूठ बात भी है, कृष्ण कहते हैं तो ठीक है। जैसे वसुदेव जी ने कहा, जी हमको लड़की भाई, हमको बेटा नहीं हुआ, और दे आए गोकुल में कृष्ण को, ये भक्ति। और युधिष्ठिर महाराज जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो ये भक्ति का विपरीत हो गया। इसलिए भक्ति के ये सब विचार, तो इसके साधन करने के लिए रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संत अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि तथा शक्ति ततो भावो प्रेमाप दंचति साधका नाम अयम क्रम
अयम प्रेम न प्रादुर्भावो भवेत क्रम।
ये भक्ति के कर्म, श्रद्धा पहले, इसके बाद में साधु संग, पहले हुआ साधु संग, साधु संग के प्रभाव से संस्कार आई, अब संस्कार से श्रद्धा आई, श्रद्धा से भजन गुरु जी के पास में पहुंचेगा, गुरुकर्ण होगा, उनके निर्देश में आरंभ किया। वही भगवान की जो डायरेक्ट जो बातें हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासख्यात्म निवेदनम, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम को कीर्तन करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के धाम में जाना, जमुना इत्यादि का, तुलसी का आदर करना, और ये सब भक्ति की बात है। ये सब उत्तमा भक्ति को लक्ष्य करके, किंतु अभी आरम्भ कर, अभी उत्तमा भक्ति हुई नहीं। तो ये श्रद्धा से लेकर के और प्रेम के आविर्भाव तक, प्रेम के उदित होने तक, ये सब 10 स्तर हैं, 10 या 10 स्तर हैं। इसके साधन करने से हम क्रमशः बढ़ते 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 प्रेम तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम होने के बाद में और की स्थितियां भक्ति स्वामी सिंधु में और सब चीजों को दी गई है, कैसे कैसे भक्त होते हैं, क्या होता है, ये सबको दिया है। यहाँ पर केवल एक श्लोक को हम लोग ये ले रहे हैं, आदौ श्रद्धावान, पहले ये श्रद्धा। भक्ति एक है, भक्ति का बीज क्या है? श्रद्धा तो उसमें आई, किंतु बीज क्या है? साधारण लोग समझते हैं कि श्रद्धा ही भक्ति लता का बीज है। श्रद्धा का बीज है, भक्ति का बीज है किसी के हृदय में कि चना या गेहूं या कोई भी चीज बोते हैं, बीज देते हैं। अब हम विचार करते हैं कि भक्ति जो एक लता के समान है, इसका बीज क्या है? कृष्ण की सेवा करने की हृदय में वासना का जगना ही यही श्रद्धा का बीज है।
श्रद्धा का बीज है
कृष्ण की सेवा की वासना हृदय में जगाने का, ये जगाने की जो भावना है, कृष्ण की सेवा की वासना, कृष्ण की हम सेवा करेंगे, ये सेवा की जो वासना है यही भक्ति का बीज है। ये यदि जन्म गया जो कृष्ण की हम सेवा करेंगे, कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, इनसे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है विश्व ब्रह्मांड में, यही सबके मूल हैं, इस चीज को जान करके उनकी सेवा की वासना हृदय में जग जाना, यही भक्ति का बीज है। ये नहीं रह करके जब कृष्ण की सेवा करेंगे ये न जगे तभी भक्ति की अभी वो बीज नहीं है,
बीज नहीं डला।
ये बीज पहले आता है, क्या? मैं कृष्ण की सेवा करूँ, गुरु यही चीज देता है, तुम कृष्ण की सेवा करो, तुम राधा कृष्ण की सेवा करो, उसमें लोभ उत्पन्न करा देता है, उसके हृदय में बैठा देता है कि इसके द्वारा तुम्हारा जीवन लोक परलोक सब कुछ इसके द्वारा बन जाएगा। यह है बीज। ये बीज होने के बाद में कैसे वो बीज बढ़ेगा, कैसे अंकुरित होगा, ये सब साधन है, समझ गए ना? भक्ति लता का बीज क्या है? कृष्ण की सेवा करने की वासना, कामना हृदय में जग जाए। लड़का पढ़ता है कब टेस्ट से?
जो आनंद होता है पढ़ने में,
उसको मन में
जब वो समझता है कि इसके द्वारा हम जीवन में उत्कर्ष लाभ करेंगे, तब तो किसी भी चीज के लिए वासना होती है कामना, ये वासना ही पीछे से मूर्ति धारण करके लौकिक दृष्टि से गांधी जी ने कामना की जो भारत को हम स्वतंत्र करें, इसी से देश की राष्ट्र की सेवा होगी, उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने इसके लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया, लाखों लोगों को कलेक्शन कर लिए, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, किंतु स्वतंत्र हुआ भारत ना परतंत्र हुआ, ये तो दूसरी बात, क्या हुआ? अच्छा, तब ये वासना है, ये भक्ति का बीज है। जब ये वासना जगी, अब ये कैसे बड़े कृष्ण की सेवा कैसे पाऊंगा, कैसे पाऊंगी, इसके लिए अब हृदय से चेष्टा करने की आवश्यकता महसूस, हमको इसको इस चीज की जरूरत है, जब जरूरत है तो उसके लिए हमको चेष्टा करना पड़ेगा, कहाँ ये चीज मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमको ठंड लग रही है, क्या जरूरत है ठंड को दूर करने के लिए, क्या जरूरत क्या है, कुछ पैसा नहीं है तो केवल आग जला लो, गरीब लोग क्या करते हैं देश में, आग जला करके आगे पीछे जला लिया, बैठ के किसी तरह से जीवन निकला, पत्ते जला लिया, जो धनी आदमी है वो क्या करेंगे,
हीटर चला,
हीटर तो लगेगा पहले, कपड़े टपड़े गर्म ये सब, और इसके बाद हीटर भी लग जाएगा, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी, तो पहले तो ये तो जरूरत है कि हमको ठंड लग रही है, हमको इसके लिए बचने की जरूरत है। इसी तरह से हर काम में कामना या वासना जो होती है, हम संसार में जो बधे हैं ये मन की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वासना जगी है ना, उस वासना से कृष्ण को भूल गए हैं और इस परिस्थिति में आए हैं। इसलिए वासना के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। यदि कृष्ण की सेवा करने की कामना वासना हमारे हृदय में थोड़ी भी आ गई, समझो जी हमारा परम कल्याण हो, परम कल्याण। अब इसी चीज को यहाँ पर ये बतला रहे हैं। महाप्रभु जी की कृपा की वंदना कर रहे हैं, बिना भगवान के कृपा के, भगवान की ये वृत्ति, सेवा की जो वृत्ति है ये नहीं आ सकती, ये जड़ चीज नहीं है। दो चीजों, दो जगहों में ये चीज मिलती है, एक मिलेगी भगवान के हृदय में और एक मिलेगी जो भगवान की सेवा करते हैं उनके हृदय में। भक्ति यहीं पर है, या तो भगवान कृपा करें, या वैसा कोई भक्त हो पहुंचा हुआ जिसके अंदर में ये वृत्ति संपूर्ण रूप में उज्जवल रूप में है, वहां से हमको मिल सकती है। जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब अवतारों में कृष्ण का अवतार सबसे श्रेष्ठ माना गया, उनको अवतारी कहा गया, ये वो मूल है। और बाकी जितने हैं उनके अंश हैं, कला हैं, विकला हैं, कुछ वर्ष है। ये सब चीज किस चीज पर निर्धारित किया गया, ये कृष्ण ही भगवान हैं, किस चीज पर?
भगवान के शक्ति पर,
गुणों के
हिसाब। दो चीज पर निर्भर होता है, एक होता है शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य। संसार विश्व ब्रह्मांड में जिनका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, जिसे जिसका किसी का बड़ा ऐश्वर्य और शक्ति नहीं है,
वो भगवान हो,
भगवान कृष्ण,
वो भगवान है। जिसमें और में वैसा धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं, जहां से ही सब निकलता है, जिसको और किसी से नहीं लेना पड़ता। सूर्य की रश्मि अपनी नहीं, आग में अपनी शक्ति नहीं, ये सब दूसरे के ऊपर में निर्भर करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, ये स्वतंत्र इस ये नहीं है, शक्ति नहीं देने वाले, कुछ ये नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में ऐसा देखा जाता है। राम है, राम को भी कुछ लगाम है, राम राम के ऊपर
क्या मर्यादा का लगाम,
मर्यादा का लगाम है, उसे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐश्वर्य की दृष्टि से जब विचार करते हैं, सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसका है आज तक, यही था जो नारायण है। नारायण से बढ़ करके और किसी को ऐश्वर्य नहीं, सर्वशक्तिमान है और सबको वो सब कुछ दे सकते हैं, उनको किसी से लेना नहीं है। अभी तक महाप्रभु जी के पहले यही प्रचलित था, जिसको जितना एपुलेंट बेसी है, ऐश्वर्य बेसी है, शक्ति अधिक है, वो भगवान है। किंतु श्रीमद् भागवत और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब आए, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो इन्होंने कहा जे नहीं, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं, प्रेम
है,
माधुर्य ही भगवत्ता का
सार। ये प्रेम जो है, माधुर्य है, ये है भगवत्ता का सार। आदमी ऐश्वर्य से किसी का हृदय नहीं जीत सकता है, उसके प्रति श्रद्धा आएगी, श्रद्धा तो आ सकती है,
सम्मान भाव,
किंतु अपना नहीं लेगा, ये आएगा प्रेम से। इसलिए भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं हो करके माधुर्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐश्वर्य से भगवत्ता का विचार मत करो, जो ये भगवान हैं ये सबसे बड़े हैं, इन्होंने कभी जन्म नहीं लिया और ये जो कुछ चाहेंगे मन से वो कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एक सेकंड में सृष्टि कर देंगे, और ब्रह्मा ऐसे जैसे लोग उनकी सब सृष्टि। ये पहले जो भगवत्ता का विचार था, कब से
महाप्रभु
जी ने सतयुग के प्रारंभ में, सतयुग के प्रारंभ की बात है, जब सृष्टि आरंभ हुई उसके थोड़े दिनों के बाद उन्हें किसकी उपासना की?
नारायण
की।
उनके सामने कौन आया?
नारायण।
नारद जी भी हैं। नारद जी ने किनकी उपासना की?
नारायण
की। ओम भगवती
वासुदेव
वासुदेव यही किया। प्रहलाद महाराज ने, वो भी सतयुग के हैं, वो किसकी उपासना की?
नारायण।
और नृसिंह एक ही तत्व है, उनकी उपासना। क्यों? ऐश्वर्य बहुत है, सर्वशक्तिमत्ता है, इसलिए लोगों ने देखा जी इनमें सब शक्ति निहित है। इसलिए साधारण लोग किसकी पूजा करता है, जिसमें बोलने की शैली है, धनी है, विद्वान है, जिसमें कुछ शक्ति सामर्थ्य है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वही देश का नेता हो जाता है।
चमत्कार का नमस्कार।
बस यही तक। गांधी जी का ऐश्वर्य की अपेक्षा प्रेम का भाव था, ऐश्वर्य पर नहीं गए। देखा ना, एक गृह, एक अत्यंत गरीब आदमी भी उनको देख करके सकुचाएगा नहीं, यदि नहीं पहचानता है तो उनके साथ में बैठ गया, जरा हट करके बैठ गया। कह देगा कि नहीं, ऐसा हुआ था। और जवाहरलाल इत्यादि जो थे
उनके पास
ऐश्वर्य के साथ में थे, उनको अधिक लोग पूजा करेंगे साधारण लोग। और जब विचारवान आदमी होगा वो क्या करेगा, वो माधुर्य की जो है। महाप्रभु जी ने ये विचार दिया, भगवत्ता का विचार इसमें तो जिसमें प्रेम है माधुर्य है। नारायण प्रेम के वशीभूत होकर के अपने सिंहासन से उठ करके, कोई भक्त आ रहा है दौड़ करके उसे गले से नहीं मिलेंगे। किसी को मैया मैयारी मुझे माखन दो, ये नहीं कहेंगे। नारायण नहीं कहेंगे जो मुझको भूख लगी है। नारायण को यदि कोई कहे जगत की, जब मैं आपकी प्रेयसी बन करके, आपकी स्त्री बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कोई भक्त चाहे जे हे प्रभु, हे नारायण मैं आपका सखा हूँगा, कहें नारद जी जैसा सखा बन जाओ। नारद जी कैसे? नारद जी वहाँ पर बैठ करके खड़े होकर के कहे प्रभु आप, कुछ दिल लगी की बातें हो जाती हैं, बस यही तक
करते।
और सखा का वो जो आलिंगन करना, परस्पर में मिलना और हृदय की बात को खोलना, उनकी चीजों को खाना, मुझे बड़ी भूख ले रही थी नारद, तुम ले आया, बस ले करके निकाल करके खाते, ये सब नहीं होगा। तो ये मधुर की दृष्टि कृष्ण में ही है और किसी भी भगवत तत्व में नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भगवत्ता का विचार करो, ये श्रेष्ठ भगवान कौन है, सबके मूल कौन है, जिसमें अधिक प्रेम और माधुर्य है वो भगवान। कृष्ण में दोनों चीजें हैं, ऐश्वर्य भी है चरम रूप, और साथ साथ में ब्रह्मा जी को दिखलाया कृष्ण ने गैया बछड़ा हरण के समय में, अंत समय में दिखलाया। जितने भी बच्चे थे वहां और जितने भी बछड़े हैं, सब
चतुर्भुज बन गए,
चतुर्भुज बन गए, नारायण बन गए। इसके बाद ये पेड़ पौधे लौता जितने हैं, ये सभी वैसे ही बन गए और सब लोग इनकी स्तव स्तुति और पूजा कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों को देखा, थोड़ी देर के बाद में बंद करके अब फिर जब आँख खुला था देखा एक
कृष्ण फिर घूम रहे हैं,
और वैसे ही मुख सुखा हुआ है कृष्ण का, और देख रहे हैं बछड़े किधर गए, सखा किधर गए, मुख सूख गए हैं, प्यास लगी है, चेहरे पर धूल जम गई है, बस उनके चरण में गिर पड़े। एक शास्त्र में देखा क्या, ऐश्वर्य देखा, कोटी कोटी विश्व ब्रह्मांड को वैसा एकदम रूप देखा, और साथ ही साथ में देखा क्या, बचाएगा हमारे बछड़े किधर गए, दोनों एक साथ। महाप्रभु जी ने कहा भगवत्ता का सार माधुर्य है, प्रेम है। यहाँ पर प्रेम, प्रेम का तात्पर्य क्या होता है, प्रेम से जो ऊंचा वाला है वो भी झुक जाता है और नीचा वाला है वो बढ़ करके उसके पास में बराबर समानांतर रूप में खड़ा हो जाता है, ये प्रेम का। उसमें छोटा बड़ा का ये सब भाव नहीं होता है। बल्कि बड़ा का छोटा होना ही यही माधुर्य है। कृष्ण भगवान होते हुए भी नारायण के भी अंशी होते हुए और एक सखा से गले से लगते हैं और सीदाम से हार करके पीठ झाड़ते हुए हंस रहे हैं और वो स्फालन कर रहा है, तुमने कभी जीता हमको, हमने तुमको कितनी बार जीता है। राजेंद्र तुमने कब जीता, तो तुम्हारे कंधे नहीं कह रहे हैं, रगड़ नहीं है यहाँ पर बैठते बैठते हैं, बतलाओ तो। और उनसे हंसने लगी और सब सखा लोग हंस रहे हैं और गोपियों के यहाँ तो वो कैसे हो जाते हैं, यशोदा जी के यहाँ कैसे हो जाते हैं। ये जो प्रेम की माधुरी है और किसी उनको जिस रूप में भी भजन करना चाहो भजन कर सकते हैं, किसी रूप में भी, मर्यादा से करो, अमर्यादा से करो, जैसे करो, उनके पास में जो कुछ कोई भी वासना लेकर के पहुंचा सबको शत्रु भाव से उनके पास में भी गया तो भी उसको मुक्ति दे, उसे कृष्ण से संबंध होना चाहिए, क्रोध से हो, भय से हो, द्वेष से हो, काम से हो, काम माने जगत में जो कामना वासनाएं जो होती है ना, इसके द्वारा भी यदि अत्यंत गर्हित चीज है, खराब चीज है, कामुक, ये भी लेकर के कृष्ण के प्रति भी यदि कोई पहुंचे, स्नेह से कोई पहुंचे, भक्ति के द्वारा भी यदि पहुंचे, सभी भगवान को पाए, कृष्ण को पाए, ऐसा ये तत्व है। अब इसको हम पाएंगे कैसे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस पर विचार करते हुए ये श्लोक के ऊपर में लिया है भक्त दशा में सिंधु का, और इस पर एक एक स्तर के जो 8 या 9 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां हैं, ये एक एक सीढ़ी का विचार करेंगे। यदि इनको अच्छी तरह से समझ जाए तो वो विचार कर सकता है कि हमारी भक्ति शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, हम कितने पानी में हैं, इसमें कितना पानी और कितना दूध है, ये सब आदमी एकदम बैरोमीटर जैसा वो है। इस चीज को पढ़ने से समझने से आदमी अपने आप समझ जाएगा। इसलिए हम लोग किसी की भक्त देखते हैं जिसको जगत प्रशंसा कर रहा है और हम लोग उसके लिए हाय हाय करते हैं, गया इसका जीवन
ही गया, दया होती है,
जिसके लिए संसार सब कहता है यार भाई ये भक्ति की एकदम चुका है, सब लोग कहते हैं और हम लोग कहते हैं कि हाय हाय इसका जीवन क्या बेकार का, वो लच गया, बीच में जा रहा था शुद्ध भक्ति की धारा में और अटक गया, क्यों, ये बैरोमीटर है। लोग तो ज्योतिष से ये हाथ की रेखा टेखा दे करके कहेंगे, हम लोग रेखा फेखा देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे देख लेंगे बस इनको कोई इंजीनियर फिंजीनियर की अधिक जरूरत नहीं कितने इलेक्ट्रियल जैंट ये लोग हैं। तो ये भक्ति के संबंध में ये ऐसी सब चीज है, इसको थोड़ा सा समझने पर अपने आप समझ लेंगे इसकी क्रिया में भक्ति है कि नहीं, इसकी ये जो भक्ति कर रहा है, फूल दे रहा है ठाकुर जी के चरणों में और इतना बड़ा बड़ा कर रहा प्रचार कर रहा है, असल में भक्ति है कि नहीं, या भक्ति है तो कैसे इसकी भक्ति है, सगुण भक्ति है कि भक्ति देखावटी है कि शुद्ध भक्ति है। एक आदमी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा है, बल्कि कहते हैं हमारे सामने कृष्ण का नाम मत लेना, गोपियों ने उनका नाम रखा था, जानते हैं क्या, कृष्ण नहीं कहेंगे, कहेंगे उसका नाम हम नहीं लेंगे, नहीं चोर तो कह, औसित कहेंगे, शीत माने होता है काला, औसित माने क्या,
शीत माने सादा,
औसित माने सादा, नहीं
शीत माने सादा, औसित माने जो सादा नहीं
काला,
सफेद नहीं है,
तो औसित माने होता है काला,
जो सफेद नहीं है,
जो सफेद नहीं है, इसलिए काला ये नहीं कहा, अच्छा काला कहने से हमारा बिगड़ जाएगा,
याद रखिए काला पे भी नाम आ जाएगा,
आ जाएगा काला भी
नहीं कहेगा, कृष्ण काला ये आ जाएगा,
नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, कृष्ण को कृष्ण नहीं कहेंगे, काला भी नहीं कहेंगे, काला होने से तो कृष्ण आ गया,
अच्छा।
ये भी नहीं कहेंगे, बहुत दूर से जो काला नहीं है उसको कहते हैं सफेद, तो जो सफेद नहीं है ये कहेंगे असित,
मतलब लाल नील हरा कुछ हो सकता है,
अच्छा असित, हाँ।
इसलिए कृष्ण का नाम नहीं लेते, कहते हैं नहीं उसे हमारी कोई जरूरत नहीं, उसे कोई सुलहनामा हमारा हो नहीं सकता, बतलाइए, इसमें ऊपर से दिखता है जो भक्ति है, जो कृष्ण का नाम लेना नहीं चाहता है, जो नहीं नहीं उसे कोई जरूरत नहीं, तो भग जा कृष्ण का नाम लेकर के आए। अब देखिए जो भक्ति के एकदम जहाँ एकदम, इसको कौन समझेगा, कौन समझेगा, बड़ा कठिन है। इसलिए भक्ति के रहस्य के तत्वों को समझना बड़ा भारी कठिन है। परम सौभाग्यवान लोग बहुत दिनों तक ऐसे व्यक्ति की यदि सेवा करें तो वो जो भक्ति की वासना, सेवा करने की वासना है कृष्ण की, शुद्ध रूप में उसके हृदय में आएगी। अब तब फिर उसके लिए चेष्टा करेगा, नहीं तो चेष्टा क्या करेगा किस लिए। इसलिए पहले वो वासना आनी चाहिए, वासना में ठीक होनी चाहिए हमारी कौन सी वासना है, एक पोस्ट वहाँ पर लगाएगा, ये हमारा उद्देश्य है जीवन का, इसको हमको करना है। लोग देख रहे हैं कि फूल दे रहे हैं, ठाकुर जी को माला पहना रहे हैं, ये विचार किया जैसे इस माला को हम अभी देंगे शाम को तो इनको गले में लग करके ठंड लगेगी, ये विचार किया, विचार तक किया अपनी दृष्टि से, ये माला देना उनको सम्मान देना है, ये तो ठीक है यहाँ तक, और वहाँ तक वो भक्ति है। किंतु जो और प्रौढ़ जो भक्त हैं वो क्या विचार करेंगे, इस चीज़ को देने से इनको सुख होगा कि कुछ गड़बड़ी होगी, ये इस पर तो विचार नहीं किया। इसलिए ये विचार भक्ति के ऊपर में विचार करना है प्रत्येक स्तर पर, तब वो समझ सकेगा कि जो मैं कर रहा हूँ कैसी भक्ति कर रहा हूँ, कितना भक्ति कर रहा हूँ, और ये व्यक्ति जो कर रहा है ये जो है ये भक्ति है कि नहीं है, तब वो विचार। और नहीं तो जिस स्टैंडर्ड में है वो, जिस लेवल पे है, उसी को कहेगा जो हम सबसे बड़े भक्तिमान हैं, और वैसा ही किसी को देखेगा कहा ये सबसे बड़ा भक्त है। भक्ति के अंतर के चीज़ों को वो पकड़ नहीं सकेगा, ये कृष्ण की सेवा जो भक्ति है। इसके लिए ये श्लोक बतला रहे हैं, कितना हुआ
50 मिनट
पता नहीं, आज मुख बंद ही समझिए, अब थोड़ा सा इसमें हम आरंभ कर देते हैं कि आज तक महाप्रभु से पहले जितने लोग थे, यदि भगवान का भजन भी करते हैं शुद्ध रूप से भी करते हैं तो ऐश्वर्य को देख करके और उसी को भगवत्ता मान करके, जहाँ पर उसकी अंतिम बिंदु है ऐश्वर्य की, उनसे बढ़कर के ऐश्वर्य नहीं है, बस उनको भगवान का ऐश्वर्यमय। भगवान को पाने के लिए जो साधन होगा वो भी ऐश्वर्यमय होगा, ये भी समझिए। एक धनी आदमी को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज चाहिए, नहीं वैसे चीज चाहिए ना। और जो व्यक्ति एकदम गरीब आदमी है उसको प्रसन्न करने के लिए
मीठी बात,
मीठी बात एक पानी दे दो, एक कुछ
गुड़ दे दो,
ऐसे प्रसन्न हो जाएगा। किंतु बहुत धनी आदमी है, बहुत धनी आदमी, उसको उसी प्रकार से रिसेप्शन देना होगा
जो जैसे उसका स्टैंडर्ड होंगे।
तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए कठोर ध्रुव जैसी तपस्या, प्रहलाद महाराज जी तपस्या, कठोर वैराग्य, ये सब जो संसार में हो नहीं सकता, ऐसा यदि कोई करे 10,000 वर्ष 88,000 वर्ष तक बिना खाए पिए रहो और भगवान का मंत्र जपो ऐसे बैठ कर संसार को त्याग करके, तब तो उनको पाएगा। जैसे नारद जी ने कितनी 1,000 वर्ष तपस्या की,
ध्रुव महाराज ने तो थोड़ी सी की
6 महीना, किंतु देखो जो खाया नहीं, पानी नहीं पिया, हवा नहीं लिया, ऐसा करो तो 1 मिनट
बच्चे भी थे ना,
उम्र भी तो देखिए
उम्र भी छोटी थी ना,
छोटी उम्र से प्रश्न नहीं है। हम 5 मिनट 1 मिनट हम सांस नहीं, हमने कल परसों हमने देखा घड़ी हाथ में थी, हमने देखा जैसे मैं एक सांस कितना रोक सकता, तो मैं देखा वो कांटा सेकंड का भी चल रहा है, तो कांटे में देख करके देखा और सांस रोक दिया, तो देखा जबकि 30 पर आया सेकंड तो दम फूलने लग
गया,
40 मिनट में आया तब तो धड़फड़ करने लगा, तभी जो उसे रुका रहा, जब 60 किसी प्रकार से 60 पूरा किया तो उस समय झटपट अब रहा नहीं गया। एक मिनट भी हम लोगों का ये नहीं रहता है। अब बतलाओ जैसे उन्होंने 1 महीने या 2 महीना अंतिम वाला सांस पे नहीं रोका, सांस एकदम रोक दिया, प्राणवायु को रोक दिया, पानी की तो बात ही रही, हवा तक नहीं लिया और समाधिस्थ हो गए। देखने में मालूम होता है ये कम समय, किंतु कितनी कठोर चीज़ है जो आज का व्यक्ति हम कहते हैं हजारों वर्षों में ये नहीं कर,
ये स्वामी ने ये किया था।
कोमा की तरह नहीं होगा हमारे, कोमा जैसे कोमा में चले गए, नहीं
कोमा
जैसे आजकल डॉक्टरी से कोमा में चले गए एक महीने,
सांस तो लेता है,
सांस लेके मर रहे हैं उस समय, वो क्या करें कहाँ, ये उसमें भीतर में भक्ति की क्रिया है,
क्रिया चल रही है,
वो क्रिया खूब जोर से चल रही है, इसलिए वो भूल गए,
वो दर्शन देख रहे हैं अंदर और सांस लेना भूल गए,
भूल गए। तो इसलिए इतनी कठोर तपस्या वसुदेव और देवकी जी ने कश्यप और अदिति के रूप में 60,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान का मंत्र जप रहे हैं और अंगूठा ऐसे नीचे लगा दिया,
हाथ का,
हाथ का ऐसे, और उसके ऊपर में पैर खड़ा कर दिया, ऊपर
उल्टे हो गए,
उल्टे एकदम दोनों, और 60,000 वर्ष तक
पति पत्नी,
पति पत्नी दोनों,
देवताओं के मन से 60,000, देवताओं के मन से 60,000,
तो इतना दिन तक कतनी करता हूँ। तब तो ऐसे आश्चर्य दुख नारायण उनके बेटे होकर के आए, वो भी सेवा लिया नहीं, और उनको चतुर्भुज के रूप में उनको दर्शन दिया, का अच्छा अब हमारे समान तो कोई है नहीं, मैं तुम्हारा बेटा होकर के, तो ये देखो कितनी तपस्या, ये ऐश्वर्ययुक्त भगवान को पाने के लिए ऐश्वर्ययुक्त कठिन कठोर तपस्या करेंगे। उस समय भगवान महाप्रभु जी आए, भागवत का उदाहरण लेकर के बोले, ये भाई ये मत करो, सब कलयुग में संभव नहीं, बस तुम लोग नाम का आधार लो और कृष्ण को अपना बेटा मान लो, कृष्ण को अपना सखा मान लो, कृष्ण को कि अपनी बन जाओ प्रेयसी, उनको अपना प्रेमी मान लो, अपना प्रियतम उनको मान लो, और उनको कि